ग्रामवाणी में आप सभी का स्वागत है। ग्रामवाणी की इंटरव्यू सीरीज क्या हाल विधायक जी में आज हमारे साथ जुड़े हैं सतना जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 64 नागौत से विधायक एवं पूर्व मंत्री नागेंद्र सिंह, 5 बार विधायक निर्वाचित हो चुके श्री सिंह से ग्रामवाणी के ब्रजेश शर्मा ने बातचीत की। प्रस्तुत है उनसे हुई बातचीत के कुछ खास पहलू।
बोलूंगा बस मैं आपसे वो प्रश्न कर रहा हूँ कि काफी लंबा राजनीतिक अनुभव था आपको, कई सालों से आपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है लगभग 5 बार। किस तरह के विकास कार्य आपने किए हैं, क्या परिदृश्य है उनका?
देखिए, मेरा मत ये है कि हमको अपने क्षेत्र को एक समृद्धशाली बनाना है। हमारे क्षेत्र के जितने लोग हैं वो समृद्धशाली बनाए। समृद्धि भी तुलनात्मक होती है और हम इस बात को स्वीकार करते हैं। जब हमने अपनी यात्रा प्रारंभ भी किया था तो पंजाब के ग्रामवासी और हरियाणा के ग्रामवासी और अन्य प्रांतों के ग्रामवासी हमारे ग्रामवासियों से बहुत आगे ज्यादा संपन्न थे। हमको भी लगता था कि हमारे ग्रामवासी भी संपन्न है। किस चीज का अभाव था तो हमको महसूस किया कि यहाँ पर अधोसंरचना का अभाव है, उसको दूर करना बहुत आवश्यक है। अधोसंरचना में सभी चीजें आ जाती है, सड़क आ जाती है, बिजली आ जाती है, सिंचाई आ जाती है, कृषि आ जाता है, शिक्षा आ जाता है, स्वास्थ्य आ जाता है। ये सारी सुविधाएं हमारे ग्राम वासियों को मिले और ये सब उपलब्ध कराएंगे, उसमें कोई पार्टी दलगत भावना से ये सब चीजें नहीं होती है। ये सबके लिए है जब होगा, और हम ये सोचें केवल हमारे समर्थक पर संपन्न हो जाएंगे कि हमारे समाज के लोग संपन्न हो जाएंगे तो क्षेत्र संपन्न हो जाएगा, इस भावना से मैंने कभी काम नहीं किया है। हमारे क्षेत्र में जो भी यहाँ के निवासी हैं, जिस किसी भी दल के होंगे, यदि जनता मुझे अवसर देती है तो मैं इस भावना से काम करूंगा। मैंने इस भावना से काम किया है और आज मैं कह सकता हूँ कि हमारे क्षेत्र में बुनियादी तौर पर ये सारी की सारी सुविधाएं अब उपलब्ध हो गई। लेकिन इनका नई नई समस्याएं आती रहती हैं। जैसे मैंने देखा है यहाँ पर कि जब मैंने यात्रा चालू किया था यहाँ नागौत में 4-5 मोटरें हुआ करती, आज यहाँ पर इतनी मोटरें हो गई हैं कि हमको मोटरों की खड़ी करने की जगह नहीं है यहाँ पर। उस समय पार्किंग की कोई समस्या नहीं थी, अब हमारे यहाँ पार्किंग की समस्या आ गई। इस प्रकार से समस्या बढ़ती जाती है। पहले हम लोग बिजली जो समान बिजली हम जाते हैं वही बिजली की चर्चा होती थी, सोलर लाइट की कभी चर्चा नहीं होती। अब पता चला कि सोलर भी एक सोर्स है पावर का, तो सोलर लाइट भी हम लगवा सकते हैं। तो हम सब लोग अप्रेरित कर रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं कि भाई आप अपने यहाँ के घरों में सोलर पावर लगाइए, सिंचाई के लिए भी सोलर पावर लगाइए। कुल मिलाकर के जैसे जैसे आधुनिक आविष्कार होते जा रहे हैं तो सारी सुविधाएं यहाँ पर आए। तब की तुलना में आज से 203 की तुलना में, आज 223 की तुलना में मैं ये कह सकता हूँ कि हमने एक लंबी यात्रा ऊपर की छलांग मारी है और हम संपन्नता यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर नागौत में पहले 10-12 दुकानें रखती थी सब्जियाँ की, आज हमको यहाँ पर खड़े बैठाने की जगह नहीं है जहाँ पर लोग अपनी सब्जी रख करके बेच सके यहाँ पर। तो ये सब चीजें हैं। लेकिन इसके अलावा एक चीज मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि इस पिछले 5 साल में मैं वहाँ पर बहुत सक्रिय राजनीति नहीं कर रहा था, भोपाल वाली राजनीति नहीं कर रहा था, तो जनता के बीच में रहने का मौका मिला। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि अब लगता है कि शासन तंत्र को थोड़ा टाइट करने की बहुत आवश्यकता है। टाइट मतलब है कि उसमें सुधार भी करना चाहिएगा, प्रशासनिक तंत्र के अधिकारियों को ऊपर किसी प्रकार का अनुचित कार्रवाई भी नहीं होना चाहिएगा, लेकिन उनको डिलीवर भी करना पड़ेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कई बार मैंने देखा है कि जिस उद्देश्य से हमने कोई योजना को फ्लोट किया है, चालू किया है, वो लाभ जनता के पास तक जिस रूप से पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाया, और इसके लिए कोई जवाबदारी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं तो ये कोशिश करूंगा अपने साथियों के साथ मिलकर के कि वहाँ पर जब अगर जनता ने चुन करके भेजा मेरे को मौका मिला पुराना वहाँ जाके जाने में, तो इसको मोटिवेट करके इन सब लोगों से ये आवाज उठवाऊंगा। नहीं नहीं सर, अडल्टरेशन है, अब डिपार्टमेंट है, अडल्टरेटेड माल जनता कंज्यूम कर रही है, रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? तो ऐसे ऐसे नए नए फील्ड ओपन होते चले जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत जरूरी था, शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारे यहाँ पर हर प्रकार की शिक्षा उपलब्ध है, एंड यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा, हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। नागौत में, उचारा में, मेरे विधानसभा क्षेत्र है जसों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल हॉस्पिटल बन रहे हैं 50-50 बेड के और सब चीजों की। अच्छा। तो अब इसका संचालन ठीक से होना चाहिए, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है।
मतलब आपने जो काम किए हैं, जो काम आप बता रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपका आकलन है कि आप नागौत की जनता का जनजीवन काफी
जहाँ तक चुनाव की बात है, तो तो जनता उन सब चीजों को उपभोग कर रही है और जानती भी है और देख भी रही है। लेकिन उसके अलावा और भी बहुत पहलू होते हैं वहाँ पर लोकप्रिय होने के लिए और निर्णय करने के लिए। कुछ ऐसे हैं जो कि उचित नहीं है, जैसे जातीयता के आधार पर निर्णय लेना। हमको ये कोशिश करना चाहिए कि भाई जातीयता के आधार पर निर्णय लेना उचित नहीं है। अपने आप का मुद्दा है क्षेत्र का विकास, और विकास किस माध्यम से हमारे क्षेत्र में हो सकता है उसको आपको केंद्र बिंदु बना करके निर्णय लेना चाहिए। मैं ये बात करता हूँ, मानता हूँ कि अभी 100% लोगों के मन में धारणा नहीं आई है, अभी भी कुछ हम नेता लोग भी दोषी हैं कि हम उनकी इस कमजोरी को एक्सप्लॉइट करते हैं। मेरा पर्सनली मैंने कभी जातीयता को एक्सप्लॉइट नहीं किया है, मैंने अपने ऊपर किसी प्रकार की जातीयता की छाप नहीं पड़ने दिया है। बहुत से लोग हैं जो अपने छाप डालते हैं, और ना मैंने कभी जातीय संघर्ष को मैंने महत्व दिया है, जातीय संघर्ष नहीं होना दूंगा यहाँ पर। और यहाँ पर कानून व्यवस्था के लिए भी मैंने जब मैं यहाँ ताकत बढ़ा हूँ तो लोग कहने भी लगे हैं कि मैं यहाँ पर दादागिरी और गुंडागर्दी नहीं होने देता हूँ, क्योंकि मैं इनको कभी कभी संरक्षण ही नहीं देता
हूँ, नहीं देता
यहाँ पर। तो इससे एक मैसेज चला गया है कि यार ये सब करेंगे तो इस प्रतिनिधि से हमारा काम नहीं बनेगा। तो कम हो गया है, खत्म तो नहीं होते हैं लेकिन कम हो गया। आम जनता जानती है कि यहाँ पर दादागिरी चाहती कोई किसी को परेशान नहीं कर सकता है, जहाँ तक नागरिक सिंह यहाँ पर है, मैं सोचता अच्छी बात है यहाँ पर। कुल मिलाकर के देखिए काम तो करते ही रहना। अभी तो जैसे सिंचाई की हमारी योजना थी, हमने बड़े उत्साह से प्रारंभ किया था, उसे 5 साल पहले आ जानी चाहिए थी, 5 साल विलंब हो गया।
हाँ,
5 अब वो बर्जी के दैनी तक में है और तकनीकी कारणों से। अब तकनीकी हम टेक्नीशियन तो है नहीं, अब टेक्निकल आदमी ने जो बताया शायद उनसे भी गलती हो गई कुछ प्लान बनाने में, लेकिन वो सारी समस्या सॉर्ट आउट हो गई है। अब से एक आधा किलोमीटर का एक सुरंग बनाने से बनने की बाकी है, उसके बाद पानी आने आ जाएगा। हमें उम्मीद है कि अभी हम यहाँ पर नागौर के नहरों से पानी बहता हुआ देखें।
अच्छा अच्छा जी। आपने जातिवाद को लेकर बात की कि जातिवाद के निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन क्या सतना या नागौर जो क्षेत्र है दलित आदिवासी और अल्पसंख्यक को महिलाओं की स्थिति अभी भी लगभग कमोबेश वही है जो कुछ सालों पहले थी, कई दशक पहले थी, तो इनकी स्थिति सुधारने के लिए आपके कौन से प्रयास हुए हैं, आपने क्या किया?
देखिए महिला के क्षेत्र जिस प्रकार से पहले थी आज नहीं है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं देखता हूँ, जब मैं मोटर चलाए हुआ जाता हूँ, जो कन्याएं साइकिलों में ड्रेस लगाए हुए स्कूल पढ़ने जा रही हैं। कभी कभी मुझे लड़के बहुत कम दिखते हैं, लड़कियां ज्यादा दिखती हैं। एजुकेशन ऑफ कन्याओं का तो उसमें बहुत विस्तार हुआ है, और ये हमारी एक बहुत बड़ी सफलता है कि आर ऑल एजुकेटेड गर्ल्स नाउ यहाँ पर। तो वो तो नहीं, अब रह गया जहाँ पर जो जातीयता का है, तो बताएं जातीयता के भाव अभी भी है, क्योंकि संपर्क ऐसे बने रहते हैं, धीरे धीरे वो समाप्त भी हो रहा है, धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जो पढ़ा लिखा तबका है, जैसे पढ़ाई होती है तो ये बैरियर हटते चले जा रहे हैं। अभी तो जैसे हम जिस क्लास को बोलते हैं SC ST, उन्हीं के बीच में आपस में छुआछूत चलता रहता है, उसमें सवर्ण को कोई नाम नहीं, हम सब जानते हैं ये। तो धीरे धीरे ये जाएगा किसी एक, इट इज नॉट अ फाइट बिटवीन सवर्ण एंड SC ST, वो फाइट नहीं है, लेकिन एक मानसिकता की लड़ाई है, वो धीरे धीरे ठीक होगी।
जी, ये तो है। भाई साहब, आपने नहर की बात की, आप तो नर्मदा घाटी विकास विभाग के मंत्री हैं, लेकिन जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, चाहे वो बरगी डैम का हो, चाहे नहरों के जाल बिछाने को, ये अब तक लोगों तक जो लक्ष्य था वो क्यों नहीं पहुंच पाया, क्या इसमें आप?
देखिए नर्मदा घाटी की अलग बात है, नर्मदा घाटी ने अपने लक्ष्य को पूरा करने का मैं सफलता प्राप्त कर ली है। हमको मध्य प्रदेश में 18.5 मिलियन लीटर फुट पानी मिला था अवार्ड में, जिसकी व्यवस्था हमको करनी थी, वो लक्ष्य हम लगभग प्राप्त कर चुके हैं, वहाँ पर कर रहे हैं।
ठीक
है, और अब रहेगा हमारी जो दाहिनी तट नहर, ये इसको उन्होंने अबैंडन कर दिया था कि इसकी आवश्यकता नहीं है, मैंने उसको जीवित करके प्रारंभ करवा दिया।
अच्छा।
और उसमें 1,50,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होनी थी, वो जो बहुत बड़ी बहुत बड़ा क्षेत्र है, पानी भी है सब कुछ है, लेकिन नहर बननी चाहिए ना। तो नहर का काम जो चालू हो गया 2009 में वहाँ पर, और 9 से लेकर कभी तक पूरी नहीं हो पाई। इन्होंने कहा था कि हम 11-12 तक 13 तक बना लेंगे वहाँ पर, तो 14-15 तक बना लेंगे, नहीं बना पाई। अब वो दिक्कतें आई हैं, दो दो मशीनें आई हैं, बस ये फंस गई, स्टार्ट आते गलत निकला। तो कुल मिलाकर के नहर तो बनेगी और वो आएगी, थोड़ा विलंब हुआ है, मुझे उम्मीद है कि मैं अगले साल तक हमको ये इसका पानी मिलना चालू कर।
जी।
तो ये नहीं है कि हमारा लक्ष्य हमने उसको पूरा नहीं किया,
जी जी
नर्मदा का जितना पानी है उसमें महाराष्ट्र में गुजरात में और मध्य प्रदेश में बंटवारा जो हुआ था
जी
सरकार ने किया था वो जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसको हमने मध्य प्रदेश की सरकार ने लगभग व्यक्तिगत मुझे नहीं मालूम है लेकिन लगभग हमने उसको प्राप्त कर दिया।
जी 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 बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब आपने अपने क्षेत्र में कहा कि हम अपराध नहीं बढ़ने देंगे लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं बच्चियों के अपराध के मामले में प्रदेश तीसरे नंबर पर है। लगातार आदिवासियों पे घटनाएं हुई हैं दलितों पे घटनाएं
है। हम अब अखबार जब रोज खोल के पढ़ते हैं
जी
इसमें सब कोई पढ़ता है यार एक तो रोड एक्सीडेंट्स
जी
तो लगातार हो रहे हैं यहाँ पर सिर्फ दो बस नहीं है और कभी कभी ये भी सुनने को आता है कि किसी महिला के साथ में गलत व्यवहार भी हुआ है। कभी कभी हमारे पास ये लोग आते हैं यहाँ पर जो कि ये करते हैं ये मदद मांगते हैं यहाँ पर।
जी जी जी
प्रश्न ये है कि पहले ऐसे लोगों को संरक्षण में जाता था संरक्षण की कोई भी नहीं कर रहा है इनको तो ये मैसेज चला गया है कि हमारे नवोद विधानसभा क्षेत्र के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इस प्रकार के अपराधों किसी प्रकार का संरक्षण नहीं देंगे चाहे किसी भी पार्टी का हो। ये बहुत पॉजिटिव मैसेज हमने देने की कोशिश की है। अब अपराध तो हम भी कभी नहीं कर सकते कि हम होगा ही यहाँ पर अगर होगा तो कड़ी से कड़ी सजा उनको मिलेगी ताकि बाकी लोगों के सामने एक एग्जाम्पल हो। इसके लिए हमने वादा किया था अब मुझे आंकड़े तो नहीं मालूम है कितने हैं लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि बढ़ रहे हैं मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि हो रहे हैं लेकिन अगर हो रहे हैं तो उसकी हम पर्याप्त और कड़ी व्यवस्था भी।
जी 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 बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब आपको काफी लंबा राजनीतिक अनुभव है। अब हर राजनीतिक दल नागरिकों को मुफ्त सुविधाएं देने की घोषणा पे घोषणा किए जाता है ऐसे आप कितना बेहतर समझते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि नागरिकों को जरूरत से ज्यादा मुफ्त सुविधाएं दी जा रही है व्यक्तिगत राय क्या है?
नहीं देखिए एक एक अभी तक जो सुविधाएं दी गई हैं जरूरतमंद लोगों को दी गई है लेकिन उसकी कहीं न कहीं उन जरूरतमंद को जो सुविधाएं जो दी गई है मेरा ये मानना सुविधा देना गलत नहीं था लेकिन सुविधा का जो लाभ लेके उनको आगे बढ़ना चाहिए था उन लोगों ने अपनी कमजोरी की है। आपको हमने सुविधा दिया इसके उदाहरण के लिए हम बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों को एक रुपया किलो गेहूँ एक रुपया किलो चावल देते हैं 20-35 किलो हो जाते हैं। अपना ये था कि वो 1 दिन की 2 दिन की 5 दिन की मजदूरी 6 दिन की मजदूरी में रोज महीना भर के खाने की व्यवस्था हो जाती है।
जी जी
तो समय मिला
जी हेलो
अपना घर भागे बच्चों को पढ़ाएंगे बच्चों को कपड़े देंगे और
जी जी
वहाँ मैंने देखा है तो लापरवाही की है 5 दिन काम किए आप सब महीने भर खाने की व्यवस्था हो गई काम ही करना बंद कर दिया और अपने समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसलिए इसके लिए तो हमने कोई व्यवस्था नहीं बनाई थी। अब हम लोग कह रहे हैं कि सरकार तुमको इतना दे रही है तो सुविधा दे रही है सुविधा का तुम लाभ उठा करके तुम हमारे बराबरी में आओ
जी
करेंगे अब तो बराबरी में आएंगे
बिल्कुल
उसको हम अनुचित तो नहीं कह सकते हैं लेकिन हम जिनको लाभ प्राप्त हो रहा है उनको उसका फायदा उठाना चाहिए और उठाना चाहिए ये मैं कह सकता हूँ।
जी जी अच्छा आप पार्टी के काफी वरिष्ठ नेता हैं संघ से भी आपका काफी अच्छा संबंध रहा है। अभी संघ के कुछ वरिष्ठ प्रचारकों ने जनहित पार्टी बना के अपनी तरफ से चुनाव से कितना बेहतर मानेंगे?
यह जनहित पार्टी देखिए कौन से मुद्दे लेके वो बना रही है हमारे यहाँ पर एक कुछ चीजों में तो अब एक मत हो चुका है। पहले जब शुरुआत में 1951-52-60 के आधा दशक का हम देखे उस समय एक बुनियादी तौर पर फंडामेंटली हम लोग नीति निर्धारित कर रहे थे कौन से दिशा में हम चलेंगे
मतलब
दिशा निर्धारित हो चुकी है। यहाँ पर हम सब लोगों ने जितनी पार्टी यहाँ पर कोई भी प्योर कैपिटलिस्ट पार्टी नहीं बन सकती है प्योरली साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी नहीं बन सकती है। मध्य मार्ग हम लोगों ने चुना है विच इज सोशलिज्म उसके अंदर काफी फ्लक्चुएशन है लेकिन इसके साथ साथ जो बुनियादी चीजें हैं जिसको सबसे बड़ी आवश्यकता है हमको ध्यान देते हैं उसमें किसी प्रकार का झगड़ा नहीं है। कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं कहती सड़क न बने कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं कहती है बिजली न बने कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं कहती सिंचाई न बने शिक्षा न हो या स्वास्थ्य सुविधाएं कोई भी नहीं करती। अब जिसके बुद्धि कितना दिमाग कौन कितना सुविधा देता है ये केवल जनता को तय करना पड़ता है। दो तीन चीजें फंडामेंटल है जहाँ पर हमारे विवाद होते हैं अभी भी हम पोलिटिकल फोरम से बात करते हैं जिससे हमने वादा किया था कि हम सप्ताह में आएंगे तो हम कश्मीर में जो धारा 370 का प्रावधान किया उसको हम समाप्त कर देंगे। हमने हमको मौका मिला दो तिहाई बहुमत मिला हमने उसको समाप्त कर दिया मैं कभी कभी कांग्रेस पार्टियों से प्रश्न करता हूँ कि भाई इसमें हमने क्या अपराध किया कि आप हमसे नाराज उसको लेकर क्या आप चाहते हो कि कश्मीर हमारा देश का अभी नग्न नहीं है और न बना रहे जाकर के।
बिल्कुल,
तो इसका उत्तर तो वो देते नहीं है क्योंकि हमने किया तो हम उससे तो लेंगे ही।
बिल्कुल,
यहाँ पर अब जैसे यहाँ पर कांग्रेस सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बना हुआ था, यार दुनिया के सब देश में अपने नागरिकों का रजिस्टर होता है वहाँ पर, ताकि हमको ये तो पता चले कि हमारे देश के नागरिक कौन है। कोई भी विश्व का कहीं भी आकर के हमारे यहाँ फंस जाए तो हमको पता भी नहीं चले कि हमारे यहाँ बैठे हुए हैं। इतनी उदारता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हम भी विदेश जाते हैं, पासपोर्ट दिखाना पड़ता है, और अगर हमारा पासपोर्ट की सीमा 15 दिन है तो 16वें दिन नहीं होगा तो हमको पकड़ के बंद कर देंगे वहाँ। तो अगर हमने ये चीज को स्ट्रिक्ट किया, क्या दिक्कत किया? और एक भावनात्मक बस रही है यार, हमने अयोध्या में राम मंदिर बनाने के हमने प्रयास किया, पूरे आप क्या कमिट किया था, हमने बना दिया, तो आपत्ति किसको है यार? क्यों आपत्ति है? हमने क्या अपराध किया इसके अंदर? ये उत्तर तो देते नहीं है। यहाँ पर हमने काशी मंदिर का बढ़िया सुंदर बना दिया है, अच्छे सुंदर नहीं मंदिर नहीं बनने चाहिए क्या?
क्या
हमको भगवान के दर्शन करने के अच्छा स्थान नहीं चाहिए क्या?
बिल्कुल,
हमको चाहिए, हम कह रहे हैं। अब जिनको आपत्ति हो वो अपना तर्क बताएं, हमको हमारा तर्क बड़ी क्लियर है कि ये भारतवर्ष भारतीय माने आध्यात्मिक देश है, सनातनी धर्म वाला है, और जब तक ये धर्म नहीं स्थापित नहीं होगा, यहाँ पर चलेगा नहीं, तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ सकते।
जी। भाई साहब, एक बात ये है कि आप भी संगठन में काफी सक्रिय रहे। रघुनंदन शर्मा जी जैसे लोग अब कह रहे हैं कि भाजपा में अंदर ही अंदर अब अच्छा नहीं चल रहा है, क्या मानते हैं आप?
नहीं देखिए, एक दो बड़ी क्लियरिंग यहाँ पर फैक्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं थी। आज हम मध्य प्रदेश में देखिए, मैं इसमें ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहे कांग्रेस पार्टी का, लेकिन आप खुद ही अनुभव कर रहे होंगे, हमेशा जब टिकट का बिटवारा अभी आप ही का अखबारों में छपा कि कमलनाथ के 130 आदमी को टिकट, दिग्विजय सिंह को इतने लोगों के टिकट, और फिर राहुल जी को फलाने को खुद एडमिट कर रहे हैं कि हमने अपने लिए टिकट मांगी। हमारे यहाँ पर किसी भी गुट का नाम नहीं सुना होगा, पार्टी ने किसी को दिया किसी को नहीं दिया है यहाँ पर कि हाँ इस गुट के हैं इस गुट, लेकिन अंदर जब कहीं बहस हुई होगी तो लोगों ने गुण दोष तो देखा होगा। यार हर आदमी चाहता है कि विनिंग कैंडिडेट आए, तो गुण दोष देखा होगा, यार ये विनिंग कैंडिडेट है कि नहीं है, ये देखेंगे। हमारे यहाँ पर जो सामाजिक समीकरण है उसका भी ध्यान दिया होगा यहाँ पर, लेकिन जो गुटबाजी बीजेपी, लेकिन जब इतने बड़े फैसले होंगे तो बहुत से सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारे सतना जिला में कम से कम 7 सीटें हैं, तो 7 ही प्रमुख कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगी, सबको तो नहीं मिलेगी,
नहीं मिल पाएगी।
तो अगर हम सब लोग ये मान लें कि हमको नहीं मिलेगी तो हम विद्रोह करेंगे, इसका तो कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अभी मैं जरूर स्वीकार करता हूँ कि पहले बिल्कुल नहीं था, अब थोड़ा थोड़ा धुआं लगने लगा है जाकर के, भगवान करे कि आगे जा देना पड़े।
जी। बस अब आपने टिकट की बात की, अब तो स्थिति यह है कि कोई भी राजनीतिक दल है टिकट नहीं मिलने पर अपनी निष्ठाएं बदल देता है, कुछ घंटे में ही दल बदल कर रहा है, आप तो काफी
ये तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है यार। ये लोग वो लोग हैं जो कि ये अपने व्यक्तिगत कल्याण के लिए कर रहे हैं, नेताओं को जन कल्याण के लिए बात करनी चाहिए।
जी।
मैं उन नेताओं में से हूँ तो जन कल्याण की बात करता हूँ, व्यक्तिगत कल्याण की बात नहीं करता हूँ। मैं राजनीति में व्यक्तिगत कल्याण के लिए नहीं हूँ यहाँ पर, ये होना भी नहीं चाहिए यहाँ पर। जन कल्याण की बात करो, जन कल्याण का मुद्दा बनाओ, बहस का मुद्दा बनाओ, वो ज्यादा अच्छा है। व्यक्तिगत कल्याण के अब तर्क भी देंगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, उसके साथ ऐसा हुआ, वो तो ठीक है, तुम्हारा उसका समाधान हो जाएगा, जनता को क्या मिलेगा?
बिल्कुल ये था।
तो जनता की बात करनी चाहिए ना, हम नेताओं को, हम जनता के प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं यहाँ पर,
बिल्कुल
व्यक्तिगत कल्याण के थोड़ी समझा जा रहे हैं जाके राजनीतिक करने के।
जी बिल्कुल भाई साहब,
जनता अप्रिशिएट करेगी।
जी बिल्कुल भाई साहब, आखिरी प्रश्न मेरा ये है, अगले 5 वर्षों के लिए आप चुने जाते हैं तो क्या विजन है आपको अपने क्षेत्र के विकास को लेकर?
देखिए अभी के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि सैंक्शन भी हो गए हैं, कभी वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग अधूरी बनी है, पूरी नहीं हुई है, इन सब को पूरा करना पड़ेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अभी तक तो मैं अब अगर हमारी जब नहर आ जाती है, हमारे यहाँ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में जरूर प्रेरित करेंगे अपने यहाँ के लोगों को। मेरी मंशा ये है कि बाहर के लोग आकर के यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ना डालें, यहीं के लोग जो रहने वाले हैं उनको पास ये टेक्निकल नो हाउ आ जाना चाहिए कि वो डालें यहाँ पर। हमने औद्योगिक क्षेत्र यहाँ पर घोषित भी करवा दिए हैं, एक वहाँ पर नागौर में बाबूपुर के पास है, अमरपाटन के पास है, 2 यहाँ पर नागौर में यहाँ पर भी है, तो यदि लोग कोई इंडस्ट्री डालना चाहे इसको प्रेरित करना बहुत आवश्यक है, तो सप्लीमेंट करेगा एग्रीकल्चर को। जैसे हमारे यहाँ पर कभी जब टमाटर पैदा होता है तो लोग एक एक, एक रुपया का किलो बिकता है जाकर के, लोग बेचारे पैदावार करने वाले आयकर नदी देकर चले जाते हैं।
बिल्कुल
ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, उनको तब भी पर्याप्त उनका पैसा मिले, ये थोड़ा संतुलन बनाने की आवश्यकता
है।
ये करेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ग्रामवाणी से बात करने के लिए, बहुत बहुत आभार।
थैंक यू
जी भाई,
नमस्कार।
थैंक यू, नमस्कार।
इस कार्यक्रम में प्रस्तुत विचार, वायदे, दावे और तथ्य विशेष व्यक्ति के हैं। इन दावों, तथ्यों और वादों की जिम्मेदारी मोबाइल वाणी या उनकी टीम नहीं लेती। श्रोताओं को सलाह दी जाती है कि निर्णय लेते समय आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें।